और से मैं शशि थरूर को सुन रहा था। देखें आप अर्नाब गोस्वामी को सुने या जाहिल टाइप मीडिया को सुने, चले एक, एक बात है, शशि थरूर मतलब आई होप आई
एम फाइन पर्सन राइट।
हाँ जी, पढ़े पढ़े लिखे, मैं कांग्रेस में उनकी वो भी सुनता रहा पास में, उनके फाइनेंस उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और वो सारे, मतलब मैं उनकी भी बातें सुन रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि जो एटीट्यूड है, जो टोन है दुनिया की तरफ, वो पाकिस्तान की तरफ, हम इनको सबक सिखाएंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, यार प्लीज बंदे बढ़ना, लेट्स कोऑपरेट and you know let's cooperate, let's Pakistan, China, India, we are sitting at a place where we've got tremendous resources, we've got similar cultures, and we have much more to gain in the world if we cooperate rather than going into a conflict. I don't know which part of this people don't understand, but cooperation is much better. Let's bury our hatchets. And you know, we Pakistan is a reality. You can't change that. Take it. You are a reality? Fine. We don't have a problem with it. Terrorism, we have aap yakin kijiye humne ye path badi achhi tarah dekh chuke hain, hum fundamentalism ka part badi achhi tarah dekh chuke hain. Pakistan aaj tak fundamentalism ya wo right wing attitudes aaj bhi bhugat raha hai, aap to abhi is pe chadh rahe hain, to aapse meri guzarish hai aapke apne interest mein ki let's be rational and you know let's move forward by cooperating with each other and not getting into a conflict.
थैंक यू। मेरा यहाँ पर एक और चीज आया है कि इसमें हम जब दुनिया की इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं उनकी प्लेसमेंट एट सर्टेन प्लेसेस बड़ी, चाहे वो आप गूगल की बात कर लें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट में बात कर लें, मगर यहाँ पे पाकिस्तान का जो साइबर सिस्टम है उनका भी बड़ा कमाल का रोल रहा। यानी ये जंग एक तो जैसा आपने कहा कि टोटल डिफरेंट थी कि हर एक अपने इलाके से ही उसने अटैक भी किया, पाकिस्तान ने भी जब वापस मिसाइल फायर किए तो उनके जहाजों को उन्हीं के इलाके में गिराया भी, हमारे दो पायलट्स अगर गए भी हैं तो वापस भी वापस आ गए। ये एयर मार्शल उन्होंने जो साइबर सिक्योरिटीज के तहत उनके तकरीबन 70% जो ग्रिड्स हैं उनको ओवर द क्लाउड उनको जो बंद किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनके 125 डैम हमारी पहुंच में है। यानी दिस इज अ टोटल 6th generation वॉरफेयर को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इससे पहले की जंगों में तो वो कारकर्दगी नहीं की थी, बट ये जो 6th generation वॉरफेयर है इसमें दे प्लेड वेरी वेल, इसके बारे में क्या कहेंगे? और अगर हम असले की बात करते हैं तो इंडिया ने सारा का सारा फॉरेन असला, फ्रांस का असला, यहां का असला इस्तेमाल किया, उनके अपने मुल्क के बने हुए नहीं थे। वेरस चाइना जो है, पाकिस्तान जो है, अल्फता मिसाइल पाकिस्तान ने खुद कामरा कॉम्प्लेक्स में बना, J-10C चाइना पाकिस्तान में बना, J-Thunder 70 चाइना के इश्तराक से बना, चाइना वॉज देयर फॉर द बैकअप, रशिया ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। तो इंडिया ने तो जितना असला इस्तेमाल किया वो फॉरन असला इस्तेमाल किया, इसके बारे में कुछ फरमाना चाहेंगे? यानी दिस 88 आवर्स वर वेरी कॉस्टली फॉर इंडिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान।
यस, देखिए मैं तो अभी तक जंग पे बात नहीं करना चाह रहा था या उसके टैक्टिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज यू नो इस मार कुटाई का फायदा क्या। लेकिन अगर अभी आप इसको स्ट्रेटेजिकली देखते हैं तो दो तीन बातें, वेस्ट की बहुत अरसे से फिलॉसफी ये रही कि जी ये एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट बनाते रहे, मतलब राफेल इज अ फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट एज आई सेड एंड एन एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट, चाइनीज साइड की थॉट ये थी कि जी हम उससे ज्यादा इफेक्टिव मिसल्स बनाते हैं। आप बड़ा जितना मर्जी महंगा टैंक बना लें, अगर मैं एक ऐसा मिसल बनाने में कामयाब हूं कि मैं उसको दो मिनट में मार दूंगा, तो आप जितने मर्जी टैंक बनाते रहें आप अपने। तो वो एक 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 सोच के एक और एक एक कॉन्फ्लिक्ट की थॉट का फर्क। लेकिन अभी तक ये जो 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 थॉट्स थी जो जो आर्मामेंट में और जो वेपन प्रोडक्शन में जो थॉट थी वो उस तरह नहीं टेस्ट नहीं हुई थी, तो ये बड़ा मजेदार टेस्ट हुआ। अब थोड़ा सा इसके वो प्रैक्टिकल टाइप बातों में जाएंगे। देखिए, अब पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो सारा कंटिगुअस है, वो मतलब अगर अगर कम्युनिकेशन है तो चाइना की, अगर रेडार्स हैं तो चाइना के, अगर एयरक्राफ्ट है तो चाइना का, अगर मिसल है तो चाइना का। आपका ये जो J-10C है ये कोई 500 किलोमीटर के लगभग उसका जो एयरक्राफ्ट का रडार है वो टारगेट लॉक कर लेता है, ठीक है। और आपका जो जो इसका मिसल है PL-15 जो मिसल है, इस पे एक डिस्कशन चल रही है कि हमारे पास एक्सपोर्ट वर्जन था या चाइना का डोमेस्टिक वर्जन है। डोमेस्टिक वर्जन जो है उसकी ज्यादा रेंज है, तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज है, और अगर वो एक्सपोर्ट वर्जन था तो फिर 150 मील की उसकी 150 किलोमीटर की उसकी रेंज है। तो अब ये सारे कंटिग्युअसली सिस्टम्स आपस में चल रहे हैं। जो हमारे पास अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है वो भी चाइना का, ठीक है। जो एवैक जो है अब वो चाइनीज टाइप का एवैक चल रहा है। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में लिंक हैं, और जाहिर है वो चूंकि एक ही कंट्री के बने हुए हैं, सिमिलरली डिजाइंड है, तो हमारा बड़ा कंटिग्युअस सिस्टम है जो जो चलता है। इंडिया का अगर SU-400 बैटरी है तो वो रशिया की बनी हुई है, अगर राफेल आप उड़ा रहे हैं तो वो फ्रेंच है, अगर आपने कोई रडार लगाए हुए हैं या कुछ और है तो वो आपका अमरीकी है, अगर आपके SU-30 जो एयरक्राफ्ट हैं या MiG-29 है तो वो रशियन हैं। तो आपका एक थोड़ी सी खिचड़ी है जो आपस में उस तरह कंटिग्युअसली जाहिर है मतलब उस तरह नहीं बैठती। सो हमारे अर्ली मॉर्निंग एयरक्राफ्ट ने आप हमें बता रहे हैं, देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग वॉरफेयर थी, जहाजों ने बॉर्डर तो क्रॉस ही नहीं किया, ठीक है जी। आपके राफेल का ख्याल ये था कि वो आपको बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेज कर लेगा आपके जहाज को, उसके टारगेट उसके रडार आपके टारगेट लॉक करेंगे, उसका मिसल जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज आपको भी नजर ही नहीं आया होगा तो आपके जहाज को मार देगा। लेकिन PL-15 की ज्यादा रेंज थी, J-10C की उससे ज्यादा रेंज थी, उसने उसे इफेक्टिवली इंगेज किया और इसीलिए उन्हें समझ ही नहीं आई, वो तो अपने इलाके में उड़ी जा रहे थे। ये देखें है तो ये पीछे से बात शुरू हुई ना कि 2019 में जब आपका आपने अपने जहाज पहले, तो ये देखें कि थोड़ा सा इससे भी जूम आउट करें, जो आपकी तीन मेन फोर्सेस जंग लड़ रही होती हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, सबसे पहले एयर सुपीरियोरिटी अगर आपके पास नहीं है तो आपकी नीचे टैंक और नेवी नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि इन्होंने आपको एयर कवर दिया होता है, अदरवाइज अगर आप बगैर एयर कवर के चल रहे होंगे और दुश्मन के पास एयर सुपीरियोरिटी होगी तो वो आपके लोगों को नीचे हिलने ही नहीं देगा, नीचे मारेगा। सो एयर सुपीरियोरिटी, एक तो एयरफोर्स इसलिए सबसे क्रिटिकल होती है कि आपने पहली स्टेप में एयर सुपीरियोरिटी ले। दूसरा इश्यू यह है कि एयरफोर्स बड़ी वर्सेटाइल फोर्स होती है। एयरफोर्स सुबह आप 2000 किलोमीटर इधर मार रही होगी और शाम को 2000 किलोमीटर आपके मुल्क में दूसरी तरफ मार रही होगी, बिकॉज इट्स वेरी रैपिड। आपने अगर टैंक 2000 किलोमीटर मूव करने हैं तो ये तो आपको महीना लग जाएगा करते हुए। बट सो एयरफोर्स इज वेरी वर्सेटाइल, इट्स नेसेसरी, इट्स द फर्स्ट आर्म वेयर यू मस्ट गेन एयर सुपीरियर। 2019 में जब आपने सबसे पहला हमला किया तो जाहिर आपने एयरफोर्स के थ्रू ही आए तो वो भी शॉर्ट टर्म ही और एयरक्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म पायलट, ठीक है जी। अब इंडिया को ये था, और उस वक्त से मोदी साहब ने अपना ली भी थी कि जी हमने को बड़े सोफिस्टिकेटेड जहाज लेने हैं, हमें उनको समझ आ गई थी कि जी एयर सुपीरियोरिटी नहीं होगी तो मसाइल। आपने जाके $9 बिलियन के 35 राफेल खरीदे और आप बड़े स्टॉप हो चुके थे कि जी अब हम बड़े इफेक्टिव हो गए हैं, और आपने बड़े मिसाइल खरीदे और आपने रशिया से SU-400 बैटरीज खरीदी, ट्रमेंडस वेपन सिस्टम फॉर योर एयर सुपीरियर फॉर योर एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। अब ये आपने सब कर लिया एंड नाउ यू वर रेडी टू प्रूव टू पाकिस्तान, बिकॉज यू सी योर इंटरेस्ट इज नॉट कि जी आपके साथ कोई इवेंट हुआ है, योर इंटरेस्ट इज टू पनिश द अदर पीपल बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर। آپ نے جناب یہ شروع کیا تو آپ نے پہلے دن اپنی ایئر فورس ہی ڈپلوائے کی جہاں سے آپ جنگ سب شروع کرتے ہیں. جب آپ نے شروع کی تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کس طرح آپ کے جہاز لگے تین پاکستان میں. کہا کہ جی ہم نے آپ کے تین رافیل گرائے ہیں, ایک SU-30 گرایا ہے, ایک MiG-29 گرایا. آپ نے نہیں مانا, نہ مانے, لیکن اگلے دن سے آپ نے جہاز اڑانے کی ہمت نہیں کی. اس کے بعد
ڈرونز پہ آ گئے,
ڈرونز بھیجنا شروع کیا کیونکہ آپ کو لگ سمجھ گئی تھی کہ ایئر سپیریورٹی آپ کو نہیں ملے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس 4-8 گھنٹے میں جہاں پہ جنگ یہ شروع ہوئی تھی وہاں پہ یہ بیٹل ختم بھی ہو چکی تھی. ادر وائز اگر ان کو یہ شروع میں فری ہینڈ مل جاتا کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی ہم تو ان کو اوور پاور کر رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں تھا. اٹ واز کلیئرلی آئی تھنک پیس کی جو دنیا میں دیکھیں پیس جو ہے نا کبھی سر جھکانے سے نہیں آتی. دنیا میں پیس ہمیشہ آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو پیس آئے گی. ٹھیک ہے جی, سو وہاں پہ انہیں کلیئر ہو چکا تھا کہ بھائی دس از گوئنگ ٹو بی ویری ناسٹی. سو بٹ As I said, what happened is history. And we've made that history. We have made it clear to you کہ جی ہمارے اوپر ہمارے سر پہ پاؤں رکھ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. دس از اٹ. ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہے تھے کہ جی اگر ہمارا کوئی ایشو ہے اس میں آئیے بیٹھتے ہیں بات کریں. And you know, like respectable nations, like on basis of equality, let's talk. And let's solve our problems. You did not agree. Rest is history. The world has seen it. The world has changed forever. This is not just India-Pakistan conflict. This has tested Chinese equipment versus the West. This has changed the world forever. These do not underestimate these 80 to 90 hours.
بہت شکریہ. 88 hours, ڈونٹ فارگیٹ دوز 88 hours. سو پاکستان ہیز پروفڈ, اللہ کرے کہ یہ اسی لحاظ سے رہے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. آپ نے اپنے اکوپمنٹ کے لحاظ سے, آپ نے اپنے وارفیئر جو بھی آپ نے یوز کیے, اپنے جذبے کے لحاظ سے, اپنی جو سائبر سیکورٹیز کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ اوپر رہے. سر میرا یہاں پر ایک سوال ہے, پورے کے معاملے میں چائنا اینڈ ترکی ور بہائنڈ. سعودی عربیہ بولا ہی کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سعودی عربیہ گئے ہیں, ادھر نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا انہوں نے اپنی ایک سپیچ کر دیا جس میں اگین انہوں نے آکیپائیڈ کشمیر کا ذکر کر دیا ہے اور انہوں نے پانی کا بھی ذکر کر دیا ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ کوئی چانس ہے کہ ان کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ ہم جا رہے ہیں اور سعودی عربیہ نے حالانکہ ان 88 آورز میں پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا, مگر اگر انڈیا کوئی در اندازی کرتا ہے ان اگلے کچھ دیر میں, کیونکہ وہ ٹیررسٹ کا ذکر کر رہا ہے, تو ہم پریشر دے کے پاکستان کو بڑھنے نہیں دیں گے بائی پریشر تھرو سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ نے تو اراؤنڈ 200 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہوئی ہے اور یوناٹیڈ عرب امارات نے بھی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی ہے, تو ہو وڈ دے سپورٹ؟
دیکھیے یہ کہنا کہ انہوں نے شاید ہمیں سپورٹ نہیں کی یا اس معاملے میں وہ ایبسلوٹلی خاموش تھے, آئی تھنک کہ یہ ہمیں اس کی, اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں, وہ جو جے شنکر ہیں ان کے کیا نام ہے انڈیا کے, تو ان کی ٹویٹس میں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یو اے ای کے بھی امبیسڈر تھے, جو بھی کوئی اتھارٹیز تھیں ان سے ان کی کنٹینیوس کی بات چل رہی تھی, انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا ہے. سو کنٹریز بہت سی جگہوں پہ اوپنلی بہت سی باتیں نہیں کر رہی ہوتی, بٹ بیہائنڈ دا لائنز, جیسے دیکھیں امریکہ اور چائنا کی اب اناؤنس ہوئی باتیں, لیکن یہ باتیں چل
رہی ہیں, بہت زبردست, بہت زبردست.
وی ڈونٹ ریلی نو کہ جی یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن مجھے خدشہ ہے ان باتوں سے کہ انڈیا جو ہے, اور وہ انڈیا نہیں ہے, وہ مودی جی اور ان کی جو سوچ ہے نا, وہ سپریمسی والی, وہ خطرناک ہے اور وہ ول ڈرائیو دس ریجن انٹو پرابلمس اینڈ دا لوزر ول بی انڈیا. دیکھیں ہم پاکستان, اف دیر از اینی کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, ہو ڈو یو تھنک ول بی پشڈ بیک؟ سو وہی میں کہوں گا کہ انڈینز سے میری یہی گزارش ہوگی کہ ذرا
لاجیکلی تھنک, لاجیکلی
थैंक लॉजिकली।
बहुत शुक्रिया जनाब आशिर अजीम साहब, प्रोग्राम को इसी तरह देखिएगा सुनिएगा, अल्लाह ताला बेहतर करे। और वाकई बहुत सारी चीजें जो मैं और आप देख रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, बहुत कुछ। आखिर में मैं उन लोगों को कहती हूँ कि खुदा का वास्ता, कोई होश के नाखून लो। हर मौके की एक नजाकत होती है, उस वक्त उसकी बात करना चाहिए। पाकिस्तान के चंद सर फिरे लोग जो हैं वो मैं ना मानू के ऊपर चल रहे हैं, तो लुक एट द थिंग व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान, सेलिब्रेट इट एंड बी विद देम। बहुत शुक्रिया सर आपका,
थैंक यू गॉड ब्लेस,
थैंक यू जनाब आशिर अजीम साहब। एवरी मंडे को हम इनकी इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, हकीकत में यू विल इंजॉय अगर आप इनकी बातों को सुने तो, एक सुलझे हुए शख्स की बातें हैं। चलिए फिर चंद एक स्पॉन्सर्स का जिक्र आ जाए और उसके बाद फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड मेरे साथ रहिएगा। आपने भी बेसमेंट की रेनोवेशन करवाना है तो रابطہ करो, एक जीता मेरे हाथ में लगा। क्या कमाल की रेनोवेशन और दाम बहुत मुनासिब।
कौन सी रेनोवेशन? टैरिफ लग रहे हैं, भूल जाए सब कुछ।
अरे बाबा चिंता न करो, नैशिक रेनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, लीगल बेसमेंट, साइड एंट्रेंस, वॉशरूम, किचन, पेंट, फ्लोरिंग, तमाम काम सिटी परमिट के साथ करवा के देते हैं, बहुत मुनासिब दाम है। अब ये आजमाइश शर्त है, गारंटीड प्रोफेशनल सर्विस। कॉल अली 4168378378 37 4168378 37। जी साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं साज़ो आवाज़, मैं आपके साथ आरिफा मुजफ्फर और मेरे साथ एक भाई हैं, क्विकली मैं उनका पैगाम सुनना चाहती हूँ। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम सर।
जी जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर आपने देख लें, इंडिया की आवाम तो एक मोदी जी के अपने ही के जोरो जबर था, सीधी सी बात है। जो ताबड़तोड़ उन्होंने किया था, देखे बेचारे मासूम बच्चे, वो उनकी नमाज जनाजा है कि पढ़ी जा रही है, सारा कुछ सामने के दिखाया जा रहा है। वो मस्जिद में के बच्चे नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, तो फिर बात यह कि क्या मैसेज देना चाहते। पिछली सीधी सी बात है कि इंडिया के लोगों की भी इनका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है पिछले 35-40 साल से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। चले मूवियों में तो एक दिखा दिया भाई, एक 5 किलो का मुक्का, 10 किलो का मुक्का, एक वो मूवी स्टार अपने एयरफोर्स का, उनका बिजनेस है, उन्होंने तो अपना पैसा ले लेना है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी के आर्मी है उनकी, कितना बंदा बर्दाश्त करे। जब एक किया एयरबेस पे वो एक पायलट वो बेचारा शहीद हो गया, फिर एयरफोर्स के चीफ उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो है कि हमें वो मारते रहेंगे, तो हम यही कहते रहे कि भैया अपने वो कर ले, दूसरा जो आपकी तरफ से हुआ है तो उसकी है, वो खुली इंक्वायरी कराए। तो फिर जब एयर चीफ ने वो एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले बच्चे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमने तो ट्रेनिंग ली हुई है, अपनी सरजमीन के लिए ली है ट्रेनिंग, इस मुल्क के लिए ट्रेनिंग ली है। फिर उन्होंने एक स्टेप उठाया, सीधी सी बात है, कुरान भर के 26 उन्होंने अटैक किए। फिर पहले भी एक मैसेज आकर दिया था कि आप हम जो भी करेंगे आपकी जो अपने आर्मी के आपके एयर बेस है वहां पे करेंगे, जो ठिकाने हैं। ये नहीं है कि मजहबी का डाल दिया कि मंदिर पे कर दिया, गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे, चर्च पे, ये नहीं होगा। और फिर वीडियो उन्होंने जारी की 26 के 26 एक अटैक करके, तो अपने जो पायलट था उसने कहा कि मुझे पीछे की तरफ से ना वो हुक्म होता तो मैं तो आगे लेके जा रहा था। सीधी सी बात है कि वो भी सीखे कुछ, एक जिम्मेदारी आर्मी के साथ उसको ये मैसेज, उसकी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जहां भी खड़े होते हैं, अच्छा पाकिस्तान तू दहशतगर्द है, ये नहीं लेके चलेगा। सीधी सी बात है, बड़े अच्छे लोग हैं ये इंडिया के, लेकिन पीछे मैसेज दे दे के यहाँ पे भी कुछ लोगों के ब्रेन वॉश हुए हैं, کہہ کے دہشت گرد کا موویاں دیکھ دیکھ کے نا یقین کرے کہ ایسا ان کا برین واش کیا ہوا ہے کہ بھائی کہ ہم بھی بڑے شکتی شالی ہیں.
بہت شکریہ سلمان صاحب. میجورٹی اچھے لوگوں کی ہیں. میں تو پاکستان کی پولیٹیشن میں پاکستان کے پولیٹیشنز کے بارے میں بھی یہی کہتی ہوں اور میں انڈیا کے پولیٹیشنز کے بارے دے پلے ود دا پیپل مائنڈ. اور پنجاب نے بڑی قیمت چکائی ہے.
اب انہوں نے کتنا نقصان کروایا ان کے اپنے وہ تیارے جو تباہ ہوئے سارا کچھ ہوا وہ نہیں بتا رہے لیکن ہوا ہے سارا کچھ. انہوں نے ٹیکنالوجی لی.
بہت شکریہ. میں دو تین کالز لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ میں نے ٹیک آف کر لینا ہے. جی السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟
اللہ کا شکر ہے.
جی آنے رہا.
جی جی آپ آن دے.
جی بھائی دیکھیں جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان نے کیا ہے حوصلے تو دبر کا اس کو جو انٹرنیشنل چینل ہے لائک سی این این اور بی بی سی اور امریکہ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ حمل جرت کا مظاہرہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا.
صحیح.
ان نے ہمارے سویلین لوگوں پر میزائل پھینکا ہے اور بنا پروف کے پھینکا ہے. پھر جب انہوں نے جا کر دھویا انہوں نے ان کے ایسٹ جیل تھے تو ملٹری ایسٹ ان کو جا کے ہٹ کیا اور دن کی روشنی میں کیا. اور ابھی بھی چند لوگ یہاں پر پڑھے لکھے ہو کر بھی وہ بےحدہ باتیں اور بندے کو شرم آنی چاہیے کہ آپ خود بتائیں آپ پڑھی لکھی ہیں کہ پاکستان نے کوئی پہلے قدم اٹھایا تھا.
ابھی بھی پاکستان نے ٹیک ٹائم اٹ ٹک ٹائم انہوں نے جواب دیا ہے. انہوں نے آگے بڑھے نہیں ہیں. جب نور خان بیس پہ کیا تو پھر ظاہر ہے جب انہوں نے نیلم ڈیم پہ بھی کیا تو پھر انہوں نے ان کے ڈیمز کو بلاک کیا ہے. مطلب وہاں پہ انڈیا کے بہت سے شہروں میں ابھی بھی بجلی نہیں ہے.
ہاں جی. تو دوسرا دیکھیں کہ یہ اتنے اچھے ہیں ان کے ساتھ ایک بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں. چلو پاکستان کے ساتھ کے ہو گئے. چلو چین کے ساتھ ان کو کیا مان. نیپال والے جشن منا رہے ہیں. بنگال والے وہ اتنے ہوش ہیں کہ انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. ایک بھی ہمسایہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کی صرف ہندوازم جو ہے نا وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے. ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. پاکستان تو نے ابھی دکھایا کچھ نہیں. پاکستان نے پاکستان کے پاس اللہ کے فضل کرم سے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا آج کوئی بھی چینل اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا کہہ رہے ہیں. میری بات کو آپ جھوٹا یا غلط تسلیم کر.
نہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا بھر کے اخباروں میں بڑا تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. نمبر لاسٹ کال.
تھینک یو. پاکستان زندہ باد.
پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. جناب آپ کی کال کا انتظار ہے. 7860 I want it Azam Chaudhary. 7 Sayyid Raza, give me a call on my studio number 416-620-1778. Call me on my studio 416-620-1778-416. کیونکہ اس کے بعد میرا ایک اور پروگرام ہے جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. زیشان السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم.
ہلو.
جی زیشان السلام علیکم.
جی آرفا جی کیسی ہیں آپ؟
اللہ کا بہت شکر ہے جی. بات
بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے میں بات کر رہا ہوں. اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. میں بھی اپنی جاب پہ ہوں. یہ جو ایشو تھا سپیریئر کہنے کا جنرل صاحب نے منیر نے جو کہا تھا سپیریئر اس کو میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں گا اگر آپ مناسب سمجھے تو میں کہوں.
کہیے.
سپیریئر کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے. تو ہمارا اسلام جو ہے سب سے اعلیٰ درجے پہ اس سینس میں ہے کہ اس میں ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. ہر چیز کا ذکر ہے. ہر چیز کو بتایا گیا ہے. ہر چیز کو متوازن رکھا ہوا ہے. ہر چیز کا حق دیا ہے. ہر چیز کو صحیح بتایا ہے اور غلط بتایا ہے. اور یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے جتنا اسلام کے اندر ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو سپیریئر اس سینس میں کہنا ہے جو منی صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سب سے اچھے. مثال کے طور پہ کرسچینٹی میں اگر وہ برا مذہب نہیں ہے لیکن اگر اس میں 60% یا 70% چیزیں ہیں تو اسلام کے اندر 100% چیزیں ہیں. اگر ہندوازم میں اس کا اگر 50-60% اچھی چیزیں تو اسلام کے اندر 100% اچھی چیزیں. اسلام کمپلیٹ اس پہ بیان کیا ہوا ہے. سپیریئر ان دا سینس کے سب سے اعلیٰ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ دوسرے مذاہب برے ہیں. دوسرے مذاہب ہیں لیکن ان میں کمی ہے. ان میں سارے موضوعات سارے سبجیکٹس ڈیفائن نہیں ہیں. قرآن شریف میں الحمدللہ ہر چیز بخوبی بیان کی ہوئی ہے بتائی ہوئی ہے اور اس کا ذکر کیا ہوا ہے. تو یہ اس سینس پہ جنرل منیر نے सुपीरियर कहा था जो मुझे मैं समझ पाया हूँ और जो मैं समझता हूँ, दिस इज माई बिलीफ। बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी एवरीथिंग इज विद द डेफिनेशन एंड विद द एक्सप्लेनेशन, औरत के क्या हकूक हैं, बीवी के क्या हकूक हैं, बेटी के क्या हकूक हैं, आपके हमसाये के क्या हकूक हैं, आपके पास पैसा है तो आपके रिश्तेदारों के आप पे क्या हकूक है, यानी देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, इवन मुआशरे के बीच में रहने के लिए द ज़ाबता इखलाक जिंदगी का ज़ाबता बयान किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी।
जी वालेकुम अस्सलाम
जी। रियाज रोजगार है सिस्टर
जी। जी रियाज पे की हाल है?
तो शुक्र है अल्लाह का सिस्टर जी, बहुत अच्छा है जेड़ा उन्होंने जंग रोक ली, दोनों साइडा वास्ते अच्छा होया, किसी भी तरीके ना रोकी है वो, चला गुजरात सी वो चढ़ दौड़िया, चलो अल्लाह ताला ने साडी मदद की और किसी तरीके नाल जंग रोक गई, बड़ा भला होया उस खिते दे लोगां दा, भावे बंदा उधरों मरे या इधरों मरे, बंदा तो नहीं ना मरना चाहिए, इंसान नहीं मरना चाहिए, ते ओ नुकसान तो सारे बच गए ने, और साड़ी एयरफोर्स नू बहुत ज्यादा सलूट करन दी जरूरत है, उन्हें बहुत अच्छा कारकर्दगी विखाई है और हमेशा विखाई है, जदों भी लोड़ पई है उन्हें जरूरत तो ज्यादा काम होर ज्यादा सन, बहुत ज्यादा टारगेट हिट कर सकते सी, लेकिन चलो जिथे इथे मुक जानी चाहिए।
मगर अगर नहीं तुम ये गल की ना होर्स ज्यादा, देखो जी उनके ड्रोन कोई वापस नहीं जा सका, 3 ड्रोन्स को कैप्चर किया इन्होंने, 500 प्लस ड्रोन्स फायर किए थे, इसराइल के वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स थे, वन ऑफ द बेस्ट, और कोऑर्डिनेशन का, आप तो बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़ी पहचान वाले इंसान है, आर्मी में अगर समंदर के साथ हैं तो जाहिर है नेवी के साथ आपकी एयरफोर्स चलती है, नेवी के साथ ये। अगर आप ग्राउंड के ऊपर हैं तो अभी आशर अजीम इसको बड़ी तफसील से बता के गए हैं, इट इज नॉट ओनली द एयरफोर्स, योर ग्राउंड फोर्सेज मूव विद द एयरफोर्स, सो बैकबोन है एयरफोर्स बट ऑल द 3 आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, चाहे वो हमारी नेवी है, एयरफोर्स है या वो है, दे आर ऑल इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, मगर उनका कोई निशाना खता नहीं हुआ, ना उनका कोई ड्रोन वापस किया है और उन जहाजों को भी गिराने का नुकसान हुआ है तो उनका हुआ है, बट हमारे दिस इज व्हाट आई थिंक दे हैव डन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।
उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया सारी फोर्सेज ने, और मैं स्पेशली एयरफोर्स नु आख्या स्पेशल करके कि उन्होंने जेड़ा उन्होंने सिस्टम उड़ाया इस वजह नाल करके, और फौज पाकिस्तान सारी ने अच्छा ही रोल प्ले किया, और जेड़े बैकबोन टारगेट सी उन्होंने वो हिट कर दे ते इंडिया की कमर टुट जानी सी, लेकिन वो कैपेबल है सर, कर सकते सी, पता नहीं किस वजह
नहीं नहीं उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि आज की जो मेरे पास पूरी रिपोर्ट आई, आज की रिपोर्ट ये है कि अगर अब डोनाल्ड ट्रंप और ये लोग सऊदी अरेबिया में आए हैं, से आज नरेंद्र मोदी साहब की अगर आपने स्पीच सुनी है, और अगर इंडिया कोई दरअंदाजी करता है इस वक्त में, और पाकिस्तान ने अब कहा है कि अब अगर पाकिस्तान ने फर्स्ट अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर फर्स्ट पहले पहलगाम के वाक्य के बाद अगर आए थे और पाकिस्तान फौरन चढ़ दौड़ता तो पाकिस्तान की सुबकी थी इसमें, उन्होंने बड़े ब्रेन के साथ काम किया, बट उन्होंने कहा अगर अब कोई भी ऐसा अटैक किया गया तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट्स व्हाट इट इज। इसमें भी शायद कोई स्ट्रेटेजिक वॉर होगी, आपको पता ही,
वो बेहतर जानते जेड़े उत्थे बैठे हुए, जेड़े पोस्ट दे उत्थे बैठे हुए, साडे नाल बेहतर जानते, लेकिन अपनी नजर नाल देखते ना, साडी नजर जेड़ी है वो ये काम करती है कि जो कुछ कर सकते सी इन्हां कीता नहीं है, पता नहीं किस वजह तो नहीं कीता, उन्होंने किसने रोकया की वजह लगी है, जेड़ी 2-4 चीजा सी ना अगर वो हिट कर देंदे ते इंडिया 50 साल पिछे चला जाना सी।
नहीं फिर देखिए द वॉर की मैं और आप वो तो मैदान के बाहर बैठ के कह सकते हैं, देखिए बोथ आर न्यूक्लियर पावर, मैं आई डाउट इट वेरी मच कि कोई इतना इमोशनल फैसला करना चाहिए था कि उसके बाद इंडिया के पास भी वो भी अपनी जगह कर सकते थे।
वो तो पहले क्या मैं कि भी वो बेहतर जान दे मैं
इसलिए मेरा ख्याल है कि क्रिएट ही नहीं करना चाहिए जितना है उसके
लिहाज से। सानू एक गल सिस्टर जी, असि जिम्मेदार स्टेट हाँ, साडे किसे बंदे नूं न्यूक्लियर दा नाम ही यूज नहीं करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
कि मतलब न्यूक्लियर दा कई लोग जड़े ने उंदा नाम यूज करदे, उस नाम नूं यूज नहीं करना चाहिए, उहदे बारे च गल भी नहीं करनी चाहिए।
थैंक यू।
ओ मरदा की नहीं करदा, ओ तां आखर वाली गल होंदी।
बहुत प्यारे हो जयस भाई, तुहाडे नाल एक दिन बैठ के लंबी गल्लां होणगीयां
इंशाल्लाह।
गुड न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर ली, किसी ने भी नहीं आगे कहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को रिलीज किया गया, एक एयर मार्शल, एयर कमोडोर जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा था। देर आर सम अदर गुड न्यूज कमिंग इन, अल्लाह करे इस मुल्क में हारमनी हो, बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर देर आर सम पीपल जो आपकी यानी मैं इमरान खान साहब की बहन के बारे में जिक्र करती हूं, मुल्क जिस क्राइसिस में से गुजर रहा है, मोहतरमा अलीमा साहिबा को मेरा ख्याल है उन क्राइसिस को, मुल्क को कंसिडर करना चाहिए पहले, बजाय इसके कि अपनी कंडीशंस को लेके आए। बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्र में उन्हें मौत क्यों बांटते, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। और आप इमेजिन कीजिएगा दिस इज व्हाट हैपेंड इन गाजा। बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्र में उन्हें हम मौत क्यों बांटते, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। भला इकबाल और गालिब का कहां बंटवारा मुमकिन है, कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। अगर नफरत जरूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी। चलो मिलकर लड़े हम तुम जहालत और गुर्बत से, क्या खूबसूरत बात है। चलो मिलकर लड़े हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। संभाले उनको मिलजुल कर सिखाएं फन मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी। इधर लाहौर उधर दिल्ली, कहां जाएं हम फारिस, यही वो चार कस्बे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। रहमान फारिस की ये पोम है, और जनाब शफीउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, इट्स ब्यूटीफुल, आई लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। न्यूज का सेगमेंट है, मगर न्यूज के सेगमेंट से पहले आई वांटेड टू टेक यू टू, हमारे साथ होंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी साहब। Get out of this politics thingy now. We have to focus for one thing at a time. Fight on ek jahaz, ek मैदान पे लड़े तो ज्यादा बेहतर।
घर तक पैसे भेजना कभी आसान नहीं रहा है, आपके हाथों से इंडिया में बैठे आपके अपनों तक सिर्फ कुछ टैक्स के साथ। जी हाँ, जब आपकी फैमिली को हो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, तब टैप टैप सेंस देता है आपको ग्रेट कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट्स, ना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की चिंता, ना कोई हिडन फीस का डर, जस्ट हमारा इजी टू यूज ऐप और पैसे सीधा घर। डाउनलोड आवर ऐप एंड यूज प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर First send of $200 or more. Tap tap and send.
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान ताज़ो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स।
टेलीटाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेज की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस,
गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA. तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड. मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666. टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स.
चांदनी
बैंक्वेट हॉल.
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस. चांदनी बैंक्वेट हॉल.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
क्या बात है बेटे, बढ़िया बाजार नजर आ रही है.
अबू जान खुदा का वास्ते, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है.
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर. गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे.
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं. बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी. इसकी मेलविस ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन
416-747-6800. इतने मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलते, भले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलते. बटाला सुपर मार्केट
स्कारपुरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट. बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपुरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम. फोन 416-264-3111.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब. लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप. 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, बिकॉज़ वी केयर.
शॉपर्स खुद जाइए तैयार. लीटास कॉस्मेटिक्स फिर से लाए हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी सेल.
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ.
80% तक की सेविंग ऑन योर फेवरेट प्रीमियम ब्रांड्स.
बस आपको आना है लीटास कॉस्मेटिक्स, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, जस्ट ऑफ हाईवे 404 एंड 407 एंड क्लोज टू 401.
सेल इज फ्रॉम April 26 टू May 18, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे. मदर्स डे गिफ्टिंग का भी एक्सेलेंट मौका. Visit LisasCosmetics.com.
कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है.
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो. 3 साल लई नो ब्याज.
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन. 9058747171.
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है.
मेरी सेविंग $350.
मेरी सेविंग सिर्फ $100.
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775.
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना.
वही बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है. और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने. आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773.
خوبصورت دانت با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن فلنگ کراؤنز بریجز کلیننگ ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس فری کنسلٹیشن دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ
2997466
میں خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں چوڑیاں لے لو کڑے لے لو چینز لے لو سٹون جیولرز روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے روبی جیولرز 7086 ایئرپورٹ روڈ 905-677-6888 جی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں ملاقات کے لیے جنرل خالد نعیم لودھی صاحب میرے ساتھ ہیں میں انہیں سے آپ کی بات چیت کرواتی ہوں آف کورس پاکستان وارفیئرز اور یہ 88 آورز کے بارے میں بات کریں گے سماعت فرمائیے جناب لیفٹیننٹ جنرل خالد نعیم لودھی
احترام لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں اینڈ آف کورس جو صورتحال گزری تین چار دن کے لیے یعنی ہر پیش رفت ہندوستان نے کی پاکستان نے بڑے تحمل کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیا اور بھرپور جواب دیا آج سم اپ کرنے کے حوالے سے جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں مگر نریندر مودی صاحب نے جو آج اسپیچ کی ہے وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا اسپیچ نہیں ہے We'll talk about all this. Jazab, assalamu alaikum.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ جی تھینک یو ویری مچ
بہت شکریہ سر مجھے آپ کا پہلا دن کا انٹرویو آیا کہ اگر ہمیں تنگ کیا تو ہم گھس کے ماریں گے وہاں پہنچ کے ماریں گے مجھے وہ بات آپ کی یاد آ گئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب ہم سم اپ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے آپ نیو یارک ٹائمس کی دے رہے ہیں آپ گارڈین کی بات کر لیں جس پیپر کو آپ اٹھا لیتے ہیں میرے پاس وہ پکچرز بھی ہیں ان پیپرز کی یعنی ایوری بڈی از اپریشیٹنگ کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں دے ہیو ڈن دا بیسٹ تو اب آپ ہی کی زبانی ہم سننا چاہیں گے
جی بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ جس کی مدد سے ہم نے ہمارے مجاہدوں نے یہ تمام کام کیے اور سلام اپنے مجاہدین کو چاہے وہ ہوا باز تھے یا زمین پر تھے یا سمندروں میں تھے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس یہ جو مڈریڈ چار دن کی ہے اس کی خصوصیات کیا ہے اس کے اندر کچھ ریکارڈ بنے ہیں اور وہ کہ آج آپ نے سارا دن اس کا ذکر کیا ہوگا لیکن بہرحال جلدی سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں اس سے پہلے رافیل جہاز دنیا میں کسی نے نہیں گرایا اس طریقے سے جیسے ہم نے گرائے نمبر دو 48 آورز کے اندر کسی نے 80 سے 90 ڈرونز نہیں گرایا ڈرونز بھی وہ جو کہ ٹاپ آف دی لائن ڈرونز ماڈرن ترین ان کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ اٹ ول جسٹ ٹیک اوے آر ٹائم اور تیسری بات دو نیوکلیئر ملکوں کے درمیان اتنی انٹینس انگیجمنٹ اس لیول کی پہلے نہیں ہوئی گو کہ یہ کانفلکٹ پھر بھی لمیٹڈ کانفلکٹ تھی اٹ واز ناٹ این آل آؤٹ وار اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ پورے طول و عرض پر تو یہ اس کے اثرات تھے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی لیکن امپلائمنٹ آف ویپنز کے لحاظ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیونکہ صرف جہاز استعمال ہوئے راکٹ اور میزائل استعمال ہوئے ڈرون استعمال ہوئے زمینی فوجوں نے صرف اپنی جگہ پہ رکے رہے پیش قدمی نہیں کی بحریہ نے بھی زیادہ حصہ نہیں لیا تو اسٹل لمیٹڈ کانفلکٹ اور بالکل مثلا آخر میں بل جا کے فریش ہولڈ پہ جا کے کہیں یہ بات رکی ہے جو پہلے دو دن کی جنگ تھی جس میں ہم نے جہاز گرائے اور ڈرون گرائے تو اس میں بھی ہمارا ڈیٹرنس تو اسٹیبلش ہو گیا تھا لیکن وہ ملٹری پارلنس میں کہتے ہیں وہ ویک ڈیٹرنس تھا یعنی کہ ڈیٹرنس بائی ڈینائل تھا تو وہ کچھ کرنا چاہتے تھے ہم نے ان کو کرنے نہیں دیا لیکن جو چوتھے دن ہم نے کام کیا وہ صحیح ڈیٹرنس ری اسٹیبلش ہوا کیونکہ وہ تھا ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ وی پنش دیم کہ تم نے یہ کیوں کیا اب ہم تمہیں اس کی سزا دیتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے ڈیٹرنس تو پکا ہو گیا دنیا کے لیول پہ جو دو تین بڑی چیزیں تین بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس وقت دنیا کا جو اخلاقی فریم ورک ہے وہ پارا پارا ہے جو قانونی فریم ورک ہے وہ بھی اس کا کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے اور میں کل اسی اپرچونٹی کو دیکھا ہوگا مودی نے کہ بھی یہ بھی موقع ہے میں یہ کام کر لوں تو فرق کیا پڑا ہے اس کے آؤٹ کم کی بات کر رہا ہوں पहली बात तो आपको पता है कि जो ईस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल एशिया है, इसमें चीन और रूस छाए हुए हैं, अफ्रीका तक वो गए हुए हैं, एशिया के कुछ हिस्से भी हैं। जो यूरोप है और जो अमेरिकाज हैं उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का मिला के इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल जो तो हिंदुस्तान ही था, और उसके जिम्मे था कि वो यहाँ पॉलिसमैन का रोल अदा करे और चाइना के खिलाफ यहाँ पर एक बुलवार्क बने। अभी इस तकोन का एक कोना टूट गया, यानी कि अभी हिंदुस्तान जो है इस इलाके का हेजमन नहीं रहा। वो अभी किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। पहले वो बांग्लादेश को डिक्टेट करता था, मालदीव को डिक्टेट करता था, नेपाल को डिक्टेट करता था, हमसे बात हम तो खैर मानते नहीं थे, ये करता था। ये एक बड़ी चेंज है। दूसरी बड़ी चेंज ये पूरी दुनिया में एक तासर था कि जो वेस्टर्न मिलिट्री हार्डवेयर है वो बहुत सुपीरियर है, और क्योंकि चाइना भी आगे बढ़ रहा है लेकिन वो उनके उनका मुकाबला नहीं कर सकता अभी तक। तो उसकी वजह से ये था कि चाइनीज हार्डवेयर बहुत सस्ता था दुनिया में, और वेस्टर्न हार्डवेयर, अमेरिकन हार्डवेयर, जर्मन हार्डवेयर, यूके का, ये बहुत महंगे थे, फ्रांस को शामिल कर ले। वो बात गड़बड़ हो गई, मतलब ये क्या एकदम आपने देखा कि किसी केसेस चढ़ गए और किसी केसेस डाउन हो गए। ये दूसरा बड़ा फैक्टर है। और ये अगर मैं ये कहूं कि ये वो फैक्टर है जो दुनिया पी नहीं सकेगी, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई हमारे खिलाफ कोई रद्देमल आ सकता है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि इस बात को दोबारा वो कायम कर दें कि नहीं नहीं ये चाइना नहीं, हमारे ही वेपन अभी भी सबसे अच्छे हैं। एक तीसरी बात मैं कर लूं, फिर आप अपना सवाल कर दीजिएगा। इस एक्शन के नतीजे में पूरी दुनिया के मुसलमानों में वो जहां भी रहते हैं एक वलवले की लहर दौड़ी है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो फलस्तीन है, साफ जरा तुर्की अज़रबैजान वाले तो वैसे ही हमारे साथ थे। तो ये सारा मामला। और एक आखिरी बात जो मैं कहूंगा, उसके बाद मैं दो बातें बाद में करूंगा, कि हमारी खारजा पॉलिसी सीधी हो गई है, हमें पता चल गया है कि कौन दोस्त है। हम बहुत देर से शोर मचा रहे थे कि भाई ये आपके दोस्त है और ये आपके दोस्त नहीं है। अब ये रोजे रोशन की तरह आया हो गया है कि आपके साथ कौन खड़ा होता है मुश्किल वक्त में, और कौन है जो पहले कहता है इनको लड़ लेने दो और बाद में कहता है कि नहीं नहीं अभी सील फायर करते हैं। जी शुक्रिया, अगला सवाल कर ले।
बहुत शुक्रिया। नहीं सर, मैं आपसे नहीं, मैं कुछ दिखाना चाह रही थी कि इंडिया का, आई एम सो सॉरी सर, मैं एक्चुअली आमिर से रिक्वेस्ट करने जा रही थी।
अच्छा,
हम चाह रहे हैं कि आपको ट्विटर के ग्लोबल अफेयर्स के अकाउंट पे लेके जाएं। ये ट्विटर का ग्लोबल अफेयर का अकाउंट है जिसपे हम आपको लेके जाना चाहते हैं, और जिसमें इंडिया ने ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि वो कोई ट्विटर को ब्लॉक करे, अदरवाइज जो उनके एम्प्लॉयज इन इंडिया हैं उनको वो अरेस्ट करेंगे। तो आई डोंट वांट कि मैं कोई फैब्रिकेट करूं या मैं कोई गलत न्यूज शेयर करूं, तो इसलिए मैं आई वॉज आस्किंग आमिर के ट्विटर के ग्लोबल अफेयर्स में वो चीजें लेके ताकि आप खुद जाके देख सके। जी सर, तो मैं यहाँ पे जो बात करना चाह रही थी कि एक उन्होंने इंडिया ने यूट्यूब की बहुत सारी चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लोग या तो बहुत नाइव हैं। इट इज द टाइम टू एनकरेज ईच अदर, दिस इज द टाइम देन वी कैन होल्ड हैंड्स इन हैंड टुगेदर, सीसा पिलाई दीवार बन सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी शिकस्त के बाद आज हिंदुस्तान का सारा मीडिया अगेन चल पड़ा किसी और चीज की तरफ, और हम उनके पीछे लग के उस तरफ चल पड़ेंगे। बाय द वे, मैं आपके साथ गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। जाहिर है नामसायद हालात हैं, हमें अपने इदारों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ डेफिनेटली खड़ा होना पड़ेगा। आपको पता होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको रिलीज कर दिया गया। वन थिंग, देयर इज अदर गुड न्यूज कमिंग इन। एक एयर मार्शल थे, उनके बेटे की डेथ हो गई है, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा था, उनको भी रिलीज कर दिया गया। एक बात याद रखिएगा कि हिंदुस्तान में जितना आपको मुझे बहुत सो को इश्क जड़ा हुआ ना इंडिया का, और इंडिया के मीडिया पे जाके बोल रहे हैं अपने मुल्क के अगेंस्ट, तो देखिए जहीरुद्दीन का नाम इतना उम्र क्रिकेट में खेला, क्या वजह है कि उसका नाम वहां से मिटा दिया गया उस स्टेडियम में से। हमारी सिर्फ कमजोरियों को देखने के बाद हमको एक दूसरे से जुदा किया जा रहा है। दिस इज द टाइम वी गॉट टू गेट टूगेदर, prove yourself that we love our country, nothing more than that. That's all what I want to
and isi baat pe एंड इसी मौजू पे मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। देखिए अगर अभी हम ये देखें कि हिंदुस्तान ने क्या खोया, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लूंगा कि हमने क्या पाया। हिंदुस्तान ने तो जो खोया साफ जाहिर है उसका मॉरल हाई ग्राउंड खत्म हो गया, उसका अखलाकी हाई ग्राउंड खत्म हो गया, उसके बाद उसको बड़ा धचका लगा मिलिटरली, उसको बड़ा धचका लगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और फिर जो उसका मुआशी नुकसान हुआ उसके अलावा उसको छोड़ दें, वो तो फिर उनका झूठ जो उनके मीडिया जो बात करें कि मैं उसकी तफसील में जाते हैं, हमें इससे क्या सबक मिला। और एक तो आपने देखा कि क्यों ही कोई बैरूनी दुश्मन का हमला हुआ तो पूरी कौम अपने आर्म फोर्सेस के साथ ऐसे खड़ी होगी कि जैसे पता भी नहीं चलता था किसका कंधा कहां पर कोई सुराख है या क्या है, बिल्कुल भूल गए अपना जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, हर थे, उन्होंने कहा घर के काम हम बाद में संभाल लेंगे, एक दफा हमने अपनी फौज के साथ खड़े होने। और अब साफ जाहिर है कि हुकूमत और फौज को चाहिए कि जो प्यार मोहब्बत अवाम ने उनको दिया है उसका वो थोड़ा सा वापस भी करें। बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई कि खर्जा अजमीन साहिबा को छोड़ दिया गया है, और भी अगर लोगों को छोड़ दें और ये अपने लोगों को गले लगा लें ये अंदर की। और बड़ा अच्छा सिपा सरार ने एक बयान दिया है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है या नहीं, उन्होंने कहा ये एक छत है जिसके नीचे हम सब ने मिलकर रहना है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। दूसरा उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मसाइल का ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ पड़े या एक दूसरे के गले पड़ जाए, ऐसा कोई बात उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल उसी का भी ये पूरा है। दो सबक जो मैं समझता हूँ जी, दो सबक मैं सिर्फ इसमें लाना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। नंबर एक, ये जो एक बयानिया था कि हम कोई कौम नहीं है, हम एक भीड़ है और हम किसी काम के लोग नहीं है, और हमें देखो अपनी हम छोटी सी गलती को इतना बढ़ा देते थे और दुश्मन की छोटी सी अच्छाई को इतना मल्टीप्लाई कर देते थे, मेरा ख्याल है कि वो बयानिया आज पिट गया। मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि बच्चों ये जिन लोगों ने ये काम किया है, उन मुजाहिदीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप ही के मोहल्ले से उठे हैं, वो आप ही के शहर से उठे हैं, वो आप ही के कस्बों से उठे हैं। तो अगर पाकिस्तान की फौज दुनिया में नंबर वन फौज या चलो किसी और नंबर पर ले आए, पहले 10 में तो नहीं केस है ना आ सकती है, तो आपकी जुडिशरी 134 पे क्यों रहे, आपके पॉलिटिशियन 140 पे क्यों रहे, आपकी पुलिस 200 पे क्यों रहे, आप सब लोग ये जो मशले राह दिखाई है आपके फौज ने, इसके पीछे चलकर तमाम महकमों में हर जगह अपने आप को करें चमकाएं और ऊपर लेकर आए, और इस एहसास कंपनी से निकल जाएं कि हम कोई अच्छी कौम नहीं, हम बेहतरीन कौमों में से कौम। एक बात, दूसरी बात, सॉरी मैं आपको अंदर इंटरप्ट कर रहा हूं, दूसरी बात यह है कि ये जो बयानिया था कि बजट सारा फौज खा जाती है, हमारे लिए कुछ छोड़ती नहीं है, मतलब वो 18% को 80% कहते थे, 18 को कहते थे 80% जो है ना वो फौज खा जाती, चलो 20 खा जाती होगी या इस्तेमाल करती होगी खाने वाली बात तो बात। तो मेरे जवानों मेरे बच्चों आज आप गौर करो कि जो पैसा आपने फौज को दिया अपना पेट काट के दिया, हम आपको सलाम करते हैं, लेकिन आप ये बताएं क्या वो पैसा किसी की जेब में चला गया, क्या वो पैसा करप्शन की नजर हो गया, या वो पैसा दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट खरीदने और अपनी ट्रेनिंग पर हमने खर्च किया और आज आपने उसका रिजल्ट देख लिया जी।
बहुत जबरदस्त आपने बात की और दिस इज व्हाट इट इज। मैंने हमेशा इस वक्त मैं चंद लोगों को जब देखती हूँ कि आप अपनी हुनस में जाके इंडियन मीडिया को जस्ट लुक एट द प्रायोरिटी, लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, किसके इमा के ऊपर आप खेल रहे हैं, किसके इमा पे वो लोग खेल रहे हैं जो लोगों को। बहरहाल आई जस्ट वॉन्ट टू सेलिब्रेट एट द मोमेंट। सर अभी आपने कहा ना कि चले आप जिस नंबर पे भी रख लें, इट इज ऑफकोर्स मैन ही रेटिंग कर रही, ये इंटरनेशनल रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी नंबर वन। राफेल के जो स्टॉक्स हैं 3.5% गिरे हैं, हमारे जो जिन जहाजों को हमने इस्तेमाल किया उनके स्टॉक 20% तक बढ़ भी गए। अब इस हकीकत को भी आप जुटा के देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि हिंदुस्तान यानी चढ़ते पंजाब का जो पंजाबी है वो बल्कि ज्यादा इन्फॉर्म्ड है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जनरल साहब मैं यहां पर, वॉर टोटली चेंज हो गई, यानी टैंकों की इस दफा जंग नहीं थी, मिसल्स की जंग थी, और अगर हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की आज की स्पीच जो है ना, और मैं उन तमाम के लिए जो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता इस वक्त मौके की नजाकत को समझते हुए डोंट बी अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ अदर, नरेंद्र मोदी साहब ने आज की जो स्पीच की है उसमें बड़ी वेनमस स्पीच है उनकी, मुझे पता चला है, खौफ है मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया। जाहिर है इस वक्त सालसी के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रोल प्ले किया, जेडी वैंस जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी डाला। इंडिया में सऊदी अरेबिया की और यूनाइटेड अरब इमारात की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, से 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के है और अगर 68 बिलियन इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड अरब इमारात की। अगर अब और पाकिस्तान का एक एहतराम भी है सऊदी अरेबिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सालसी इज ट्रेवलिंग टू सऊदी अरेबिया। नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच अगर मैं सुनती हूं तो बड़ी जहर आलूद वो स्पीच है। इंडिया दोबारा कोशिश करेगा तो क्या पाकिस्तान को प्रेशर डलवा के उसके हाथ रोक लिए जाएंगे या पाकिस्तान विल डू अर डाई?
देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप में इतना इतराक होगा, क्योंकि अगर एक सादा सी बात बाहर रहते हुए मेरी समझ में आ सकती है, आप समझ सकती हैं, तो हमारी लीडरशिप जो सारे मामले से टैकल करी क्यों नहीं समझी होगी। और वो बात ये है कि अमेरिका हिंदुस्तान का हलीफ है और उनको हिंदुस्तान की जरूरत है चाइना के खिलाफ और इस पूरे खित्ते में एक हेजमनी कायम करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में भी चाइना और रशिया है, चाइना ज्यादा है, सेंट्रल एशिया में भी वो है, ईरान में भी वो है, तो रह जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी खारजा पॉलिसी को सीधा करे और यहाँ पे किसी ऐसी फोर्स को ना घुसने दे, किसी ऐसे मुल्क को ना घुसने दे कि दरमियान में हमारे लिए वो कोई भी प्रॉब्लम पैदा करे। तो मेरा ये मशवरा है कि जब आर्बिट्रेशन की बात हो, जब कोई नेगोशिएशन की बात हो और कोई और फ्रीक इसमें साथ शामिल हो, तो वो एक कंसोर्शियम होना चाहिए चार पांच मुल्कों का, मैं उनका नाम बता देता हूं। उसके बगैर आप किसी की सालसी कबूल ना करें। इट शुड बी चाइना, अमेरिका, रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, बस। इसके अलावा ये सिर्फ एक बैलेंस ग्रुप है जिसके अंदर एक दो मुल्क पक्के तौर पे अमेरिका के साथ होंगे, एक दो मुल्क पक्के तौर पे हमारे साथ होंगे और एक आध के बारे में शक है कि वो इधर होगा या उधर होगा। तो अगर ये सालसी का तरीका कार हुआ फिर तो ठीक होगा, अगर आपने ये दे दिया अमेरिका के हाथ में तो वो आपको ऐसे गड़े में फेंकेगा कि हम जो ना परेशान रहेंगे काफी अर्से तक। लेकिन जैसे मैं ये बात समझ रहा हूं, जैसे आप ये बात समझ ली है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है पिछले एक हफ्ते में, वो ये बात क्यों समझ नहीं रहे होंगे।
चाहती हूँ कि जन साहब आपसे ही कि ये टोटल, जैसा आप पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डिफरेंट लड़ाई थी, ये डायरेक्ट कंपटीशन था चाइना और पाकिस्तान का बना हुआ असला वर्सेस द वेस्टर्न वेपन्स। इंडिया ने मुकम्मल तौर पे वेस्टर्न वेपन्स के ऊपर इन्हसार किया, वेरस पाकिस्तान का अगर जिक्र करें तो आप अलफता मिसाइल चंद दिन पहले टेस्ट हुआ था, बल्कि पाकिस्तान पे हमारे शाहीन मिसाइल्स के लिए तो सैंक्शंस भी अमेरिका ने लगा दी थी। पाकिस्तान का बना हुआ अलफता मिसाइल J-10C, ये भी चाइना और पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान का ही J-10C पाकिस्तान का बना हुआ है। J-70 जो है वो चाइना के इश्तराक से बना है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत सा असला खुद बनाया हुआ है जो इस्तेमाल किया है, मगर इंडिया का तमाम असला उसने वेस्ट से खरीदा हुआ था।
जी, अगर अगर मेरी आप असेसमेंट समझे तो मैं ये कहूंगा कि असले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझता कि कोई किसी एक साइड को बहुत ज्यादा कोई एडवांटेज है। हमें स्पेशल कुछ एडवांटेजेस थी, जैसे जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, दूसरे को हिट करते हैं उसकी रेंज ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमें एडवांटेज थी। आपने देखा हमने 2 साल पहले साइबर डिवीजन एक बनाया था, आपके प्रोग्राम में कहीं हमने जिक्र भी किया था, उसने भी अपना काम किया, आपने देख लिया। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो दो फैक्टर्स जिन्होंने वाइटल काम किया या जिन्होंने तराजू का पलड़ा जो है ना एकदम नीचे कर दिया हमारे हक में, वो थे जज्बा ईमानी हमारे लोगों का और ट्रेनिंग का मेयार हमारे लोगों का। ये जो नडर लोग और शहादत के शौक में जिनके दिल डूबे हुए, उन लोगों का मुकाबला चाहे آپ یہ چائنیز اسلحہ ان کو بھی دے دیں, وہ نہیں کر پائیں گے.
شکریہ. ابھی آپ نے جب سائبر کے بارے میں, سائبر سیکیورٹیز کے بارے میں بات کی ہے, تو صاحب انڈیا نے اگین, پاکستان نے ابھی تک کہیں بڑھ کے چیزوں کو دنیا کی تباہی کا باعث نہیں بنا. انڈیا نے نیلم پروجیکٹ پر ہمارا جو ہے ڈیم جو ہے اس پہ شیل مارا, جس کے نتیجے میں ہمارا سائبر سسٹم جو تھا وہ ایکٹیو ہوا. 70% انڈیا کے گرڈز کو انہوں نے سائبر سیکیورٹی کے تھرو بند بھی کیا. ابھی تک انڈیا کے بہت سے علاقے ہیں جو بجلی سے محروم چلتے چلے آ رہے ہیں. حروب جو ڈرون کی اگر بات کرتے ہیں, بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کا سٹکرز کو کاپی کر کے بھی تصویریں بھی اتار کے ڈال دی. یہ سر اتنا اسٹرانگ میزائل, اور پاکستان نے ان کے سارے کے سارے, سوری میزائل نے ان کا ڈرون, ان کے تمام کے تمام ڈرونز کو, چار کے پانچ ڈرونز تو انہوں نے باقاعدہ اتار دیے where they can see the technology, باقیوں کو تباہ کر دیا. یہ تو بڑی عظیمت کی بات ہو گئی اسرائیل کے لیے.
جی, اسی لیے جو خبر آ رہی ہے کہ کچھ اسرائیلی جو ہے وہ فوری طور پہ انہوں نے ٹریول کیا ہے, اور یہ بڑی وصول سے میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ گئے ہیں بھارت میں, پہنچ گئے ہیں یا آنے والے ہیں, آ رہے ہیں, اور وہ انہی چیزوں کو ان کا جائزہ لیں گے کہ یہ کیسے ہوا. صاف ظاہر ہے یہ الیکٹرانک وارفیئر کا حصہ تھا, لیکن اس میں بین میں ایک چیز کوشن کر دوں کہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہوتی ہے اس قسم کی, وہ ایک دفعہ زیادہ اثر کرتی ہے جب پہلی دفعہ اس کو اپلائی کیا جاتا ہے, اور اگلی دفعہ جب دشمن کو پتہ چل جاتا ہے تو اگلے راؤنڈ میں اس